বৃন্দ কুমার তোমার জীবে সৃজন সংহার
তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ বৃন্দ কুমার
সংগঠন Oh,
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमुनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरा श्रीजितपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सवधितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पश्चादोषिणे। हे कृष्ण करुणा सिंह दीनबंध जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जो गान हम गाया है ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। भक्ति विनोद ठाकुर का पूर्व आश्रम का नाम था केदारनाथ दत्त। उन्होंने आज से लगभग 150 साल पहले पश्चिम बांग्ला में ब्रिटिश शासनकालीन समय डिप्यूटी मजिस्ट्रेट थे। ब्रिटिश जब राज करते थे तब भारतीय व्यक्ति को कोई सरकारी उच्च पोस्ट में नहीं देते थे। मैक्सिमम डिप्यूटी मजिस्ट्रेट था। भारतवासी के लिए सबसे बड़ा पोस्ट था ब्रिटिश शासन के समय डिप्यूटी मजिस्ट्रेट। तो उसी टाइम केवल 3-4 व्यक्ति को यह पोस्ट मिला था भारतवासी। उनमें से एक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आप नाम सुने। एक नवीन चंद्र सेन, ये महाकवि है, महाकाव्य लिखा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का होता है साहित्य सम्राट। और एक है केदारनाथ दत्त। तो केदारनाथ दत्त बाद में उनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। इन्होंने जब जगन्नाथपुरी में डिप्यूटी मजिस्ट्रेट थे तब भगवान के पास प्रार्थना किए थे, भगवान आपको वाणी प्रचार करने के लिए आपका एक शक्ति मेरा संतान रूप में भेज दीजिए। तो भगवान के पास ये प्रार्थना थे, भगवान उनका एक पार्षद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनका संतान रूप में इस जगत में भेज दिए, जिन्होंने हमारे श्रील प्रभुपाद जी का गुरुदेव। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। तो वैष्णव जो दर्शन है वो व्याख्या करना बहुत कठिन है। कोई आदमी बोला कि वो प्रवचन सुनने गया तो बोला हाँ बहुत आदमी है, कितना आदमी, लाखों लाख आदमी है। हाँ बोले क्या समझाओ, क्या बैठा गया, बोले हाँ इतना ऊंचा बात है हम कैसे समझ सकते इतना अच्छा बात है हम नहीं समझा हुआ, इतना बराबर ऊंचा ऊंचा बात है। तो दर्शन के व्याख्या करना बहुत कठिन है। और आध्यात्मिक दर्शन करना को व्याख्या करना और ज्यादा कठिन है। हम शरीर नहीं है, हमें आत्मा है, इस तरह बात को व्याख्या करना बहुत कठिन। और दर्शन को जब कविता पोएट्री के लिखना और कितना कठिन काम। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वो काम किया, सारे दर्शन वैष्णव दर्शन को कविता के गान क्या करने। केवल इतना ही नहीं, बांग्ला भाषा में केवल नहीं, उन्होंने संस्कृत भाषा में भी गान लिखा, केवल संस्कृत भाषा ने अंग्रेजी में भी गान लिखा वैष्णव दर्शन। तो इतना बड़े उन्होंने विद्वान वैष्णव थे। तो उन्होंने वैष्णव दर्शन को जो मूल है शरणागति, गीता का चरम शिक्षा किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण। कृष्ण क्या बताया गीता में, सब कुछ करके एकमात्र मुझको, एकमात्र बोला नहीं, और दूसरा देव देवी को नहीं, कृष्ण क्लियर कर दिया एकम। हम गीता पढ़ते हैं, गीता व्याख्या करते हैं, लेकिन ये भाषा को नहीं समझते हैं। कृष्ण के सारे उपदेश का सार उपदेश किया दिया, सब कुछ करके केवल मुझको शरण में, मेरा शरण में आ गया, माम एकम शरणंग। तो यह शरणागति केवल, यह गीता का चरम शिक्षा शरणागति। ते शरणागति को आप लोग कुर्सी में बैठ सकते, मतलब जब बुक तो जागा बहुत जागा। ते शरणागति को व्याख्या किया, ते शरणागति को भक्ति विनोद ठाकुर ने एक शरणागति के ऊपर एक गान लिखा, गान का एक पुस्तक का नाम है शरणागति। तो वहाँ भक्ति विनोद ठाकुर ने व्याख्या किया, शरणागति है भक्त का प्राण है, छोटी चीज जब प्राण जाता है तब क्या रहते हैं, मृत है। उसका भक्त हृदय से शरणागति नहीं रहता है तो वो क्या है, मृत शरीर। तो भक्त का प्राण क्या है, शरणागति सरेंडर। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये भक्त का जो प्राण शरणागति, ये शिक्षा देने के लिए आज से 500 साल पहले पश्चिम बांग्ला में अभिभूत हुए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कर, जीव को दया करने के लिए सपार्षद शिव धाम सह अवते, पार्षद धाम सबके साथ में आते। अत्यंत दुर्लभ प्रेत करिवारे दान, शिखाए शरणागति भक्ते पान। अत्यंत जो दुर्लभ प्रेम, कृष्ण प्रेम दुर्लभ है ना, ये तो यह भौतिक चीज जगत का वस्तु नहीं है, जिनमें तो कितना कीमती वाला चीज है। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, दान करने के लिए, और ये दान करने के लिए क्या शिक्षा दिया, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। चैतन्य महाप्रभु दुर्लभ कृष्ण प्रेम दान करने के लिए आए थे, लेकिन देने के लिए तो थोड़ा बर्तन चाहिए, हम भगवान दे रहा है तो लेने के लिए तो हमको बर्तन चाहिए थोड़ा। कोई आदमी बोला हम बांटेंगे तो बर्तन तो लाना पड़ेगा घर से। तो महाप्रभु इतना दानी है, साथ में बर्तन भी दे रहा है, ठीक है हम बर्तन तो दे रहे हैं, दुर्लभ कृष्ण प्रेम दान कर रहे हैं, साथ में भी शिखा रहा है, ये जो मैं दे रहा हूँ हाँ कृष्ण प्रेम, लेकिन वह लेने के लिए एक पात्र चाहिए, उसका नाम शरणागति है। शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, दान करने के शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। भक्त का प्राण स्वरूप शरणागति चैतन्य को शिक्षा देने की है। तिया सुनने के बाद क्या लग रहा है, हमको थोड़ा चाहिए वर्तन, शरणागति हमको सीखना चाहिए, क्या चीज है उसके अंदर है क्या। तो पद्म पुराण से ये व्याख्या है, ये शरणागति का, शरणागति का छह अंग है। एक है दीनता, दैनो दैनो दीनता, दूसरा है आत्मनिवेदन, भगवान के सबमिशन, हाँ आत्म खुद को भगवान के चरण में समर्पण, आत्मनिवेदन। तीसरा गोपतृत्व वरण, गुप्ता शब्द का अर्थ है पालक, पालन करने वाला। तो भगवान जो हमारे पालन करने वाला, इस रूप में भगवान को स्वीकार करना, ये भगवान आप ही हमारे पालन करते हैं। गुप्ता रूप में स्वीकार करना का गुप्तित्व वरण, वरण करके लेना गुप्तित्व वरण। चौथा अंग है अवश्य रक्षिवे कृष्ण, विश्वास पालन, कृष्ण हम अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास, ये विश्वास रखना है चौथा अंग। पांचवा अंग है भक्ति अनुकूल भाव कार्य, भक्ति करने जो अनुकूल है वो स्वीकार करना, और भक्ति के जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना। ये छह चीज शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु। और भक्ति विनोद ठाकुर ने एक एक अंग के ऊपर बहुत सारे ज्ञान लिखा, दीनता के ऊपर बहुत ज्ञान लिखा, आत्मनिवेदन के ऊपर लिखा, गोपतृत्व वर्ण के ऊपर बहुत ज्ञान लिखा, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास इसके ऊपर बहुत ज्ञान लिखा। तो आज जो हम ज्ञान पढ़ा है यह है आत्मनिवेदन। किस तरह आत्मनिवेदन, किसका कहते हैं आत्मनिवेदन, हम हाँ आत्मनिवेदन कर दिए, लेकिन वो आत्मनिवेदन है क्या? तो मन में किस तरह भावना आना चाहिए, तुम ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, हे भगवान, कौन भगवान को बोल रहे हैं, किसके पास शरण लेना चाहिए? गीता में किसने क्या बोला, मान एक शरण मुझे केवल मुझका दूसरा किसी का नहीं। इस तरह नहीं, घर में गोडाउन बांध दिया, कोई बाजार में कोई खाने पे या गिफ्ट दिया, वो गोडाउन के अंदर डाल दिया, भगवान का गोडाउन डाल दिया, नहीं उसको कोई जीजा जी गिफ्ट दिया इसलिए गोडाउन में अंदर डाल दिया, सारे भगवान को रख दिया, फिर मालूम नहीं भगवान कौन है। मन में भावना किया कौन भगवान, हमें तो पता नहीं, एक को खिलाएंगे दूसरा नाराज हो जाएगा, तो सबको एक जगह रखे, जिसको जितना क्षमता वो खा लो, मालूम नहीं कितना 50% है, कितना 25, कितना 5% मेरा तो मालूम नहीं, मैं क्यों नाराज करूँगा आप लोगों को, मैं दे रहा हूँ आप लोग भाग करके ले लो। तो इसका अर्थ क्या है, कोई भी खुश नहीं होगा। भगवान और भक्त को मारामारी नहीं होता है, लेकिन हमारे हमारे श्रद्धा की है, किसके ऊपर श्रद्धा है, किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। लेकिन यहाँ ब्रजेंद्र कुमार, ब्रजो इंद्र, इंद्र तो राजा, वृंदावन का राजा नंद महाराज उनका लड़का, उनको वाक्य बोल रहे हैं, भगवान कौन है, वृंदावन का राजा नंद महाराज उनका लड़का है कृष्ण, उनके बारे में बोल रहे हैं। क्लियर, भागवत में बोला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम किसके प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को, ओम नमो भगवते, कौन है, वासुदेव, वासुदेव कौन है, जो वासुदेव का जो लड़का है वो कृष्ण को, इस तरह ना यहाँ भगवान क्यों पूरा निर्दिष्ट करते, कौन भगवान है, जो देवकी और वासुदेव का जो लड़का वासुदेव उनको, इसके बाद कन्फ्यूजन क्या है, भगवान कौन है। तुम्हें सर्वेश्वर, हे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, आप सर्वेश्वर, सर्वेश्वर शब्द अर्थ क्या है, ईश्वर शब्द का अर्थ है नियंता, जो शिव जी महा महा ईश्वर बहुत पूरा ब्रह्मांड को नियंत्रण करे, सर्वेश्वर महेश्वर, लेकिन उनको जो परे है, शिव जी तो केवल भौतिक जगत की नियंत्रण कर रहे हैं, और कृष्ण भौतिक जगत चिन्ह जगत दोनों को नियंत्रण, इसलिए ना परमेश्वर सर्वेश्वर सर्व ईश्वर का ईश्वर, हम संसार का ईश्वर है, संसार को मेंटेन कर रहे हैं, ईश्वर है। शिव जी अलग अलग देवता को ये एक डिपार्टमेंट का ईश्वर है, शिव जी पूरा ब्रह्मांड का ईश्वर है, लेकिन कृष्ण भौतिक और चिन्ह जगत दोनों का ईश्वर है। तुम ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छा विश्व सृजन संघात, आपका इच्छा से विश्व में सृष्टि और संहार हो रहा है। हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में ये वर्णन कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु के साथ जब हरिदास ठाकुर का वार्तालाप चल रहा था तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु व्याख्या कर रहे हैं, बहुत आदमी शिव ब्रह्मा को कृष्ण के साथ एक साथ एक बना देते हैं और शिव ब्रह्मा विष्णु के तरह है, ये बात गलत है। कोई आदमी बोलता है त्रिदिवेश ये जगत को तीन व्यक्ति चालन कर रहा है, ब्रह्मा सृष्टि कर रहा है, विष्णु पालन कर रहा है और शिव ढंग से कर रहे हैं और तीन कुल मिलाकर भगवान है। तो हरिदास ठाकुर बोले नहीं, तीन का यद्यपि तीन डिपार्टमेंट है लेकिन तीनों भगवान नहीं है, भगवान केवल विष्णु है। जिस तरह प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आपको घर बनाना चाहिए तो आप खुद नहीं बनाते क्या? आप रुपये देते हैं इंजीनियर बना देते हैं, वो बिल्डिंग पूरा ना हो गया आप क्या करेंगे? आप रुपया देकर डिमोलेशन डिपार्टमेंट के बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। तो जो घर बनाते हैं जो तोड़ते हैं वो मालिक नहीं है, लेकिन मालिक वो घर में रहता है पाल मेंटेन करते हैं। आज बाल्ब फ्यूज हो गया है, टॉयलेट में पानी ठीक से नहीं आ रहा है, पेंट करना पड़ेगा, जो मेंटेन है पालन है वो मालिक है, वो विष्णु है। तो विष्णु के साथ शिव ब्रह्मा को एक नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जितने भी शिव ढंग से कर रहा है, ब्रह्मा सृष्टि कर रहा है, लेकिन ये लोग गौण सृष्टा है, लेकिन मुख्य सृष्टा तो भगवान है, भगवान उपादान सृष्टि किया। जिस तरह ये गौण सृष्टा मालिक रूप दावा नहीं कर सकते, जिस तरह आप यहाँ पे प्रकाश प्रभु घर का मालिक है, लेकिन ये जो कुर्सी कौन बनाया? कारपेंटर, कारपेंटर बनाया, लेकिन कारपेंटर आके यदि दो साल बाद आके बोले ये मैं बनाया मुझको दे दो, तो आप क्या करेंगे? देंगे न? पीटे देगा? पीटे ही देंगे। क्योंकि वो बोला नहीं मैं तो बनाया। तुम बनाया लेकिन उपादान कौन दिया? तुम बनाए लकड़ी कौन खरीद किया? पेन कौन लेके दिया? तुम जो काम किया उसको मजदूरी कौन दिया? बनाया लेकिन बनाने के लिए मालिक नहीं है, लेकिन उपादान कौन दिया? ब्रह्मा बना सकते, इंजीनियर है, लेकिन उपादान कौन दिया? वो जो मेटेरियल को किसने सप्लाई किया? वो विष्णु भगवान ने सप्लाई किया। तो इसीलिए ब्रह्मा सृष्टा है लेकिन गौण सृष्टा है, लेकिन मुख्य सृष्टा कृष्ण है। तो विश्व का सृष्टि संहार भगवान कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तुम्हार इच्छा विश्व सृजन संहार, तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन। ब्रह्मा जो सृष्टि कर रहा है आपके इच्छा से हो रहा है, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, आपका इच्छा से विष्णु पालन कर रहे हैं। विष्णु भी कृष्ण का अंश प्रकाश है, कृष्ण है 64 गुण, 64 गुण है भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लेकिन विष्णु का अंदर 60 गुण है। रामचंद्र भी कृष्ण का समान नहीं है, आप भी बोल सकते हैं हाँ राम के कृष्ण, हाँ राम कृष्ण अलग सेम है, लेकिन रामचंद्र ने वो लीला किया है नहीं, रामचंद्र कृष्ण के 4 गुण अलग है। जिस तरह रामचंद्र के बांसुरी बजाया नहीं, ये गुण कृष्ण के लिए स्पेशल है। रामचंद्र एक सीता ईश्वर के अलग कोई भक्त के साथ लीला किया नहीं, लेकिन कृष्ण ने 16,100 गोपी महिषी द्वारका में और वृंदावन के अनंत कोटि गोपी भी हैं, तो इतना लीला विलास किया है। रामचंद्र कर सकते थे लेकिन किया नहीं, वो लीला में कि रामचंद्र उनका शक्ति प्रकाश किया नहीं, तो प्रकाश हुआ है केवल कृष्ण लीला। इसीलिए प्रभुपाद भी उदाहरण देता है, यदि विष्णु और कृष्ण एक है, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री हाईकोर्ट जज, हाईकोर्ट जज उनके जो ऑफिस में है उनके एक रूप है और जब घर में जाते हैं उनका अलग रूप है। उसी तरह भगवान जब ऑफिस में आते हैं तब विष्णु नारायण है, चतुर्भुज शासन करना पड़ेगा, शंकर चक्र गदा पद्म, और जब घर में जाते हैं तो वृंदावन है, गाय चराते हैं। तो और जो आदि रूप है कृष्ण, लेकिन ये आला उन्हें जो विष्णु दत्त है ये अंश प्रकाश है, सांश प्रकाश। तो तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, भगवान कृष्ण का इच्छा से विष्णु भी पालन कर रहे। तब इच्छा मत शिव करे न संहार, कृष्ण का इच्छा से शिव संहार करते हैं। तब इच्छा मत माया सृजे कारागार, सृजे अर्थात सृष्टि करते हैं। आप कहे कृष्ण आपका इच्छा से माया देवी कारागार बनाते हैं, कैदखाना बनाते हैं। तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, आपका इच्छा से जीव जन्म ग्रहण करते हैं, आपका इच्छा से जीव मर जाता है। समृद्धि निपात दुख सुख संगठन, समृद्धि, समृद्धि शब्द का हिंदी शब्द क्या है, समृद्धि सुख समृद्धि, निपात उसको उल्टा है ध्वंस होना, निपात जा समृद्धि निपात सुख दुख सब भगवान कृष्ण की इच्छा से। मीचे माया बद्ध जीव आशा पाशे फिर, आशा पास शब्द का अर्थ क्या है, आशा पास शब्द का अर्थ क्या है, आशा पास शब्द सुना करो गीता में है ना, आशा पाशो सतीर बद्धा कामो कृत परायण, आशा पास आशा तो आशा हो, पास अर्थ क्या है, पास अर्थात पास, नागपास, नागपास शब्द सुना बंधन, नागपास रामचंद्र को कैसे बता था, नागपास पास अर्थात बंधन, तो आशा पास अर्थात आशा रूप बंधन। जिस तरह मानो आप यह क्लास सुन रहे हैं, आने के पहले 2000 रुपये के चप्पल नीचे रख के आया, मन में क्या होगा, मन में अगर यह होता ना, नहीं हो रहा है चोरी तो नहीं हो रहा है बाकी, उसको आशा एक प्रकार बंद नहीं, मन को बात क्या रखा, यदि शिक्षा है यह तो नहीं देख रहा है, दूसरा आदमी नहीं देख रहा है, हमें बात है वह हमारे एक बंधन है, यदि चोरी हो जाएगा क्या होगा। मैंने घर में कोई रुपया दिया 20 लाख रुपया लकड़ में रख के आया, 3-4 लाख रख दिया दरजा में, अच्छा लाख रख दिया, किसी को भी बोल के आया देखना मेरा में जा रहा हूँ, हमारे घर में कोई नहीं आएगा, फिर भी आने के बाद फिर बे टेंशन, कुछ तो घर में घुसा नहीं। क्यों, उसको आशा के वो उसको पता हमारे सूक्ष्म बंधन है। तो आशा, आशा एक प्रकार बंधन है, तो आशा पास अर्थात आशारूप बंधन। तो नीचे मायाबद्ध जीव आशा पाशे फिरे, तो बंधन होने से क्या होता है, बंधन से आदमी क्या होता है, जा सकते दूर में जा सकते हैं, जिस तरह घर पे, घर पे 20 लाख रुपये लगन में है, अभी बोले प्रभु ये आ गया, बोले चल उज्जैन से घूम के, नहीं नहीं घर में तेरा काम है। आपका जो रुपया एक रस्सी से खींचा है केवल इतना तक आ सकते, या घूम के फिर के इतना काम दे, दूर में नहीं जा सकते। जितने गाय को एक रस्सी से बांधते हैं फिरते हैं, लेकिन एक लिमिट है उसका, तो आशा रूप का पास है उसका, हम फिराते हैं ज़्यादा दूर हमको नहीं जाना देते हैं, इसके बंधन के अंदर इसका अंदर ही घूमना पड़ेगा। तो आशा पास ही फिरे शब्द था उसको, हमारे जो जो मन में भाषणा है उसके द्वारा हमें बाधा है भौतिक जगत में। एक आदमी इसको एक पेड़ के पकड़ लिया, बोले मुझको सोरा सोरा मैं तो आया, मेरे तुम तो पकड़ के तुम कैसे सोरे, तुम हाथ छद तो माया, हम ना माया हमारे पकड़ लिया, नहीं माया हमको पकड़ना, हम माया को पकड़ लिया, हमने माया हमको पकड़ लिया सोरा सोरा, बोले नहीं तुमको नहीं पकड़ रहा है, तुम माया मेरे को पकड़ लिया। तो नीचे मायाबद्ध जी माया के बद्ध होने के कारण आशा रूप पास में वो घूमते फिर रहे, दूर में नहीं जा सकते। तब इच्छा बिना किसी कर ही ना पारे। आपका इच्छा शरीर के कुछ करने का क्षमता नहीं। फिर भी आदमी सोचता है हम कितना कुछ कर रहे हैं। जेलखाना में जो बुद्धिमान जी वो क्या करेंगे, गलती हो गया कैसे निकल जाएंगे, कोशिश करेंगे। जो बुद्धि कम है वो सोचेगा इसके अंदर में कैसे दादा बन सके। वो डरा था दूसरा कहे मैं 10 मर्डर केस किया फिर दबा अभी नहीं तो लास्ट 11 नंबर तुमको। तो दूसरा के साथ पैर दबा लेते हैं, उसके कपड़ा धो के लेते हैं और वो सोचते हैं मैं कितना बुद्धिमान हूँ, हाँ मैं यहाँ आके दादा बन गया। उनका मालूम नहीं है उसका गेट के बाहर में नहीं जा सकते। वो सोचते हैं मैं कितना यह दादा है, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, लेकिन वो गेट के बाहर नहीं जा सकते। तो भौतिक जगत का आदमी इतना कम बुद्धि संपन्न है वो का तब वो इच्छा भी कुछ कर ही ना पाते। भगवान की इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, फिर भी सोचते देखो मैं कितना कोई आदमी बोले मैं भगवान। एक बार एक मंदिर में आया एक महावाजी, बोले मैं भगवान। तो भक्त लोग बहुत नाराज है, बोले नहीं आपने भगवान, नहीं नहीं भगवान। भक्त तो ठीक है आप भगवान बहुत अच्छा खिले हैं, तो ठीक है भगवान बहुत प्रशंसा किया आप हमारे हमको कुछ बोलिए ना। तो कुछ टाइम बाद बोले 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 मुझके टॉयलेट जाना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं आप हमको भगवान मिल गया है आप बोलिए कुछ। बोला तो प्रशंसा कर रहे हैं, बोले नहीं नहीं आप तो भगवान, आप तो दुनिया को नियंत्रण कर रहे हैं और वो टॉयलेट कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसको नहीं भाग देते, बोले नहीं आप भगवान हैं, आपको आपको नहीं जाना, आपको भगवान आप दुनिया को नियंत्रण कर रहे हैं, आपको स्टिल इन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आदमी का हालत बहुत खराब हो गया, बोले नहीं आपको स्वीकार करना पड़ेगा हम मैं भगवान नहीं हूँ। तब हम जाने दे गए लास्ट में बोला हाथी क्या मैं भगवान नहीं हूँ। तो आने के बाद बोला ये मेरा लीला है मैं भगवान ही हूँ। इतना आदमी इतना बदमाश है। जिस तरह हम अभयचरण में देखते हैं भक्तिनाथ ठाकुर एक फल्गु भगवान के साथ मिला, तो भक्तिनाथ ठाकुर उनको बोला तुमको मालूम नहीं है तुम भगवान नहीं हो। हाँ भक्तिनाथ बहुत डांटा, ठीक है तुम दूसरा आदमी को बोला तुम खुद को पूछो तुम भगवान क्या है, तुम्हारे तुम्हारे शरीर के ऊपर तुम्हारा नियंत्रण नहीं। तो बाद में बोला हाँ मेरा भी मालूम है मैं भगवान नहीं हूँ। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोला तो फिर क्यों आदमी को धोखा दे रहे हैं, इस तरह क्यों चीटिंग कर रहे हैं। तो अब बोला आदमी जो उसको सम्मान देगा मैं क्या करूँगा, तुम्हें तो मालूम है तुम भगवान नहीं हो, आदमी को बताओ मैं भगवान नहीं। तो कुछ टाइम सोचा तो बोले नहीं ये नहीं बोल सकते, जब आदमी मुझका अगर पूजा करता है भगवान बोले मेरा बहुत अच्छा लगता है, मैं कैसे बोलूँगा मैं भगवान नहीं हूँ। आदमी जब मुझसे सम्मान करते हैं मेरा बहुत अच्छा लगता है, मैं नहीं बोल सकता मैं भगवान नहीं हूँ। तो ये मायाबद्ध जीव है, वो सोचते हैं हम नियंत्र है नहीं भगवान की इच्छा भी नहीं, सोचते कुछ नहीं कर सकते। तुम्ही तो रक्षक आर पालक आमार, हे कृष्ण आप मेरा रक्षक है आप मेरा पालक है। तुम्हार चरण बिना आशा नहीं यार, आपका चरण छोड़ के मेरा दूसरा कोई आशा नहीं। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, मेरा खुद का जो क्षमता है उसके ऊपर मेरा कोई भरोसा में पूरा छोड़ दिया, मेरे इच्छे से कुछ नहीं हो। अपनो निज चेष्टा निज बल क्षमता चेष्टा इसके प्रति भरोसा छोड़ दिया मैं, तुम्हार इच्छा आची निर्भर पे आपको इच्छा से मैं जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। भक्ति विनोद अति दिनों अकिंचन। भक्ति में ठग कर रहा है मैं बहुत दिनों ही नहीं हूँ, मैं अकिंचन हूँ, मेरा कोई आध्यात्मिक मेरा कोई संपदा नहीं है, भक्ति जगत का मेरा कोई संपदा नहीं है। भक्ति विनोद अति दिनों अकिंचन, दिनहीन अकिंचन, कुछ संपदा नहीं। तुम्हारी इच्छा है तार जीवन मरण, हे कृष्ण आपका इच्छा से वो जी रहे हैं और आपका जब इच्छा होगा वो मरने के लिए तैयारी है। यह है यह आत्मनिवेदन, इस तरह मनोभव आत्मनिवेदन। नरोत्तम दास ठाकुर का आत्मनिवेदन का और व्याख्या क्या है, ये आत्मनिवेदन है तीन प्रकार वर्णन कर, लालसा मई लालसा संग प्रार्थना आत्मिका प्रार्थना और दैन बोधिका दीनता। हाँ मैं बहुत अदम हूँ आपको इसको आश्रय दीजिए। तो हम यदि भक्ति करना चाहते हैं तो शरणागति शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और शरणागति का ये अंग है दीनता आत्मनिवेदन कृष्ण का गोपता पालक रूप में स्वीकार करना। हाँ चौथा है भगवान अवश्य हमको रक्षा करेंगे और लास्ट है जो अनुकूल है स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है वो बढ़ जाए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? आशा अर्थ आशा पाश अर्थ बंधन आशा रूप बंधन आशा पाश सतीर बद्धा काम प्रद पराय यहंते काम भगार्थम अन्नायन अर्थ संख्या।
प्रभु जी और उनकी इच्छा है भगवान के इच्छाओं के अनुकूल कर दे तो हमें भक्ति में आगे सहायता मिलती
है। जरूर कृष्ण है यदि हम हमारी इच्छा भगवान की इच्छा से अनुकूल कर दें तो भक्ति। हाँ जरूर
पर वो जो हमारी इच्छा है करके भौतिक रहते हैं तो वो कैसे अनुकूल
करें? टेक्निक हमें यदि नहीं समझ सकते तो साधु गुरु के पास जाना चाहिए। जिस तरह हमारी इच्छा है कंप्यूटर सीखना तो गुरुदेव बोलेगा ठीक है, साधु बोलेगा एक काम करो ये कंप्यूटर पूरे भगवान में सेवा में लगा, ये कंप्यूटर द्वारा भगवत गीता का बड़ी सारा दुनिया प्रचार करो। आपका इच्छा हो सकते मैं बहुत रुपया कमाऊंगा, करोड़ करोड़ रुपया मेरा बैंक में होना चाहिए, बहुत अच्छा है। ताकि ये बात की गलत नहीं है कि ये दुनिया संपदा का मालिक कौन है? लक्ष्मी देवी। और लक्ष्मी देवी का पति कौन है? कृष्ण। तो सारे संपदा तो होना चाहिए हमारे पास, हम कृष्ण का ना करें तो सारे ना संपदा हमको पास होना चाहिए। लेकिन संपदा यदि दूसरा किसी के पास है जो कृष्ण का भक्त नहीं है, अर्थात कृष्ण का जो पत्नी है लक्ष्मी देवी को असूल भोग कर रहा है, उसको तो हमें सहन नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे मन में कोई भी वासना हो सकते वो गुरु वैष्णव के अनुगत्य में वो कृष्ण के सेवा में हमें लगा सकते, कोई भी चीज। मैंने आपको बहुत अच्छा बड़ा क्रिकेटर बनना है इच्छा, ये तेंदुलकर बनोगे और तेंदुलकर होने के बाद बोले मैं मेरा साथ संपर्क करने के लिए ये अपॉइंटमेंट लेना चाहते पहले सोलमाला जाप करना उसके बाद मेरा पसंद। और मेरा साथ जो मेरा देखना देखा करने आएगा तो उसको तुलसी माला पढ़ना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा, हरे कृष्ण बोलना पड़ेगा। तो कितना आदमी का भक्त बना सकते हैं आप? तो कोई समस्या नहीं, कोई भी इच्छा हो सकती लेकिन वो कृष्ण का सेवा में लगाना। और कई प्रश्न
जैसे घर का काम करना है तो उससे कैसे कृष्ण भक्त होना?
घर का जो काम है घर किसका घर है तो भी कृष्ण भक्ति क्यों नहीं है? आप यदि मालिक बनेंगे घर का तो माया है, लेकिन घर यदि कृष्ण का होगा तो घर में सेवा करना कृष्ण का सेवा है, केवल घर को कृष्ण को अर्पण करके देना बस। काम पहले जगह तो उतना ही करना, लेकिन घर को कृष्ण को दे देना बस, इतना ही करना। अर्जुन जब युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, अर्जुन सोचता था मैं युद्ध करे राजा बनूंगा, भोग करूंगा, ये तो माया है। लेकिन कृष्ण बोला नहीं, युद्ध करना पड़ेगा मेरे लिए। बाद में अर्जुन युद्ध हो गया, सेम युद्ध, लेकिन वो भक्ति हो गया। अर्जुन युद्ध कराए, दुर्योधन युद्ध कराए, एक असुर बन गया, एक भक्त बन गया। फर्क क्या है? केवल मनोभाव। दुर्योधन का मनोभाव क्या था? युद्ध करके बाद मैं भोग करूंगा। अर्जुन का मनोभाव क्या था? युद्ध करने के बाद कृष्ण को अर्पण करूंगा, इतना ही फर्क। और अंतिम में किसका जय होगा? अर्जुन का जय होगा। इसीलिए भगवान के लिए जिस तरह माना आप घर पे हैं, आज दीदी के माता जी नहीं, प्रभु जी घर पे कोई नहीं, आप घर में क्या क्या खाना बनाएंगे? क्या क्या बनाएंगे घर में? कोई नहीं, क्या खाना बनाएंगे? क्या बनाएंगे बताइए? कुछ भी, लाइफ कुछ, और एक बार बना के तीन बार खाएंगे। रात में शुरू बनाएंगे नहीं, एक अकेला तो फिर रात में क्या बनाएंगे? अब थोड़ा रख दो, रात में खा लेंगे। और अभी तो फ्रिज वगैरह है, कल भी खा लेंगे। लेकिन घर में सारे आदमी है तो क्या करेंगे? उस तरह खाना बन सकते क्या? मन में जब भी आए नहीं है, दोपहर में खाएंगे, रात में खाएंगे, होकर चलेगा क्या? बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी सुना नहीं, घर में आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो क्या करेंगे? घर में किस तरह खाना बनाएंगे? बहुत अच्छा बनाएंगे ना। और अब आपको खबर आ गया भगवान आपका घर में आ रहा है, खाना बनाना पड़ेगा, तब कैसे खाना बनाएंगे? तो रोज आपके घर में भगवान आ रहा है, उसके लिए खाना बना रहे हैं, और एक खाना बनाने के बाद आप भी साथ में खा रहे हैं, तो घर में आपके लिए खाना बनाना अच्छा है कि भगवान के लिए खाना बनाना अच्छा है? बाद में तो आपको ही मिलेगा। तो हमारे लिए खाना बनाएगा तो एक बार खाना बना के तीन दिन खाना बनेगा, और भगवान के लिए खाना बनेगा हर रोज अच्छा अच्छा बनाएंगे, बाजार से कुछ लेके आएंगे खुद के लिए, क्या लेके आएंगे? फ्री मिल गए इसको लेके जाओ, लेकिन भगवान के लिए लेके जाएंगे और लेके जा सकते क्या? तो इसलिए भगवान की सेवा करने लॉस किया है, लाभ ही लाभ, सब कुछ भगवान के लिए है। माना आप दीपिका आपका लड़की है, यदि आपका मैं मेरा लड़की है, मीन के साथ बड़ो किया, पढ़ाई किया, खाना पीना, तो आपको उसको बोले दवा रहेगा और उसको भोग करने का बासना रहेगा, मैं तुम किया किया मेरे लिए कपड़ा धो, कपड़ा प्रेस करो, खाना बनाओ। जब आपका मतलब मैं उसका मालिक है तो उसको भोग करने का एक बासना रहेगा। लेकिन यदि आपका ये भावना होगा ये तो घर कृष्ण का है, वो कृष्ण का लड़की है, और मैं तो कृष्ण का नौकर हूँ, वो मैं भी उनके भी नौकर हूँ, तो वो यदि मेरे प्रति नाराज हो जाएगा, उसको यदि मैं बोलूँगा मेरा कपड़ा धो दो, और मालिक यदि देखेगा मेरा लड़की को इस तरह वो पनिशमेंट दे रहा है, तो मेरा मैं भी चला जाएगा। तो कौन सा मनोभाव लेना अच्छा है? तो हमें भोग प्रवृत्ति आने से हमें बंधन हो जाएगा, और सेवा मनोभाव से हमें मुक्त हो जाएगा।
कि हम माया को पकड़े हुए हैं, माया हमको नहीं पकड़ी हुई, इसको और थोड़ा क्लियर करूँ। क्या माया तो पूरा सराउंडिंग है, और हम वो अपने को कैसे रखें, हम कैसे देखो बचपन में हम लोग कहीं किसे मिलते हैं, किसी कुछ होता है, कोई फिक्शन तो बहुत सुंदर से आता है ना हम लोग, हम कैसे उसको
हम प्रभु का प्रश्न समझ गया ना? प्रश्न है जो हम माया के पकड़ नहीं, माया हमको पकड़ा है। मैं बोला था, माया हमको पकड़ नहीं, हम माया के पकड़ लिया है। तो ये कैसे समझ सकते, माया तो हमको पकड़ लिया है? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। जिस तरह मानो अभी यदि मेरा मृत्यु हो जाएगा, ठीक है, वह बात नहीं। ये शरीर, शरीर को हमने पकड़े, शरीर हमको पकड़ा है। ये शरीर आत्मा शरीर को आश्रय किया, शरीर आत्मा को आश्रय किया, आत्मा शरीर को आश्रय लिया। इस तरह नहीं, शरीर आत्मा को आश्रय लिया, आत्मा शरीर के अंदर घुस गया। शरीर आत्मा जी से शरीर के अंदर घुस गया, आत्मा भी जा सकते। तो शरीर आत्मा को पकड़ा नहीं। जिस तरह हम चावल रोटी जो खा रहा है ये शरीर में डालते हैं, आत्मा है इसीलिए वो बना रहा है। तो किसने बनाया? हमने बनाया। तो हम चाहे तो इसको सोच सकते, कोई भी टाइम सोच सकते। आज यदि हमको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, हमारे बात छोड़ दो, परीक्षित महाराज जब छोड़ दिया, परीक्षित महाराज इतने अच्छा राजा थे, जब राज्य छोड़ दिया मरने के लिए, तो देश में अशांति हुआ था बहुत। भागवत इस तरह वर्णन है, परीक्षित महाराज वह सर के चला गया, प्रायोग वचन में भागवत कथा सुन रहा था। एक दिन जब सुना मृत्यु होगा, किसी को राज्यभार अर्पण करने इतना कोई बातें नहीं, तुरंत चला गया। तो देश में कितना, देश की हालत क्या होना चाहिए था? कुछ नहीं हुआ। इस तरह हम नहीं सुना था परीक्षित महाराज जाने से देश में बहुत विश्रृंखला हो गया, मिलिट्री शासन आ गया, इस तरह अकाल आ गया, नहीं सुना हम इस तरह की बात। तो परीक्षित महाराज राज्य छोड़ने के बाद यदि समझ दुनिया में कोई समस्या नहीं होता है, हम का इतना क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि हम सब छोड़ जाएगा, दुनिया अचल हो जाएगा। लेकिन हम भगवान का सेवा करेंगे और अच्छा कुछ होगा। श्रीधर स्वामी, श्रीधर स्वामी का एक स्टोरी है। श्रीधर स्वामी का नाम सुना, एक आचार्य हैं, उन्होंने भागवत का व्याख्या किया। चैतन्य महाप्रभु उनका भागवत को व्याख्या करते थे। भागवत का पहला जो भाष्यकार है श्रीधर स्वामी है। तो उनके पहले से संसार के प्रति विराग, संसार नहीं करना चाहते, लेकिन किसी के कारण में शादी हो गया। फिर भी उन्होंने घर से भागने का कोशिश किया। पहले बचपन से भक्त है, भगवान का वाणी प्रचार करूंगा, लेकिन शादी हो गया, नहीं सोच सकते। कुछ दिन बाद देखा जो उनका संतान होगा, ठीक है, संतान होगा तो फिर मेरा पत्नी संतान के लिए रह सकते, उसके बाद में जा सकते। लेकिन जब संतान जन्म ग्रहण किया, उनका पत्नी मर गया। उनका मतलब क्या भगवान का लीला है? तो अभी ये बच्चा को मैं सोच के कहाँ जाऊँगा? और ये बच्चा कब बड़ा होगा तब तो मेरे संसार में रहना पड़ेगा, तुम भगवान का वाणी कैसे बचा दूँ? वह कुटीर में बैठ के सोच रहा था। तो वह देखे शिवकोली का अंडा मिट्टी में गिर गया, और मिट्टी गिरने के बाद फट गया, और अंडा से एक शिवकोली आ गया। जब शिवकोली आ गया तो उसका एक मक्खी का सामने आ गया और शिवकोली खा लिया। तो उन्हें सोचने लगे, रही कहाँ पर एक अंडा था शिवकोली का अंडा, और ये कहा कि जन्म ग्रहण कर खाना कहाँ से मिलेगा? तो उनके लिए भगवान ने अरेस्ट कर दिया, उसको मुक्ति को भेज दिया उसको। और जो शिवकोली के लिए भगवान इतना कुछ आयोजन किया है, और मैं वो भगवान के लिए पानी पहुँचा कर जान, तो मेरा भी इतना सोचना क्या जरूरत? तो बच्चा को घर में लग करके वो इलाका एक जमींदार थे, वो जमींदार का कोई संतान नहीं था। तो जमींदार देखा तो वो सीजर को नहीं देख रहा है, कहा है तो बोले चलो देखें, उसका पत्नी तो मर गया, एक बच्चा हो तो उस गरीब आदमी खाना पीना नहीं किया, उसके भी बीमारी हो गया क्या? देख रहे तो घर ताला दे गया, कहा देख रहे तो उसका तो बच्चा खेल रहा है, लग कर है बच्चा अंदर में खेल रहे हैं। तो नहीं मिला तो निश्चित बहुत दिन से देख रहा है तो लग करके कोई चले गया तो खोल के देखा तो बच्चे इतने दिन से आए खेल रहा है क्या खा रहा तो भी देखा मधु मुख्य छत्ता से मधु टपक रहा है उसके मुख में गिर रहा है तो वो बच्चा को लेके गया जमींदार ने उनका तो कोई बच्चा नहीं तो उनको लालन पालन किया सीधर का तो खबर नहीं तो दो दिन बाद वो लड़का जमींदार बन गया और सीधर गोस्वामी हो गया और सीधर गोस्वामी का कृपा से आज हम भागवत का अर्थ समझ रहे हैं। सीधर स्वामी जी व्याख्या नहीं करते थे भागवत पर हम कोई नहीं समझ सकते तो सीधर गोस्वामी गृह त्याग करने से सारी दुनिया का बस भागवत मिल रहा है शुद्ध भक्त को तो मिल रहा है जो असुर है उनको भी मिल रहा है भागवत कथा करके परिवार मेंटेन कर असुर लोग भी कर रहा है उनको भी मिल रहा है सीधर स्वामी का कृपा से मिल रहा है तो साधु लोग असुर को भी इतना कृपालु है और जो लड़का है वो भी जमींदार बन गया लेकिन सीधर गोस्वामी घर में रहता था सीधर का हालत क्या होता जा सारे जगत का आदमी किया होता वो लड़का को वो एक नौकरी बनना देता है तो भगवान का सेवा करने तो कितना मदद सारे जगत का ही मंगल ये तेरा हम विश्वास करके देख सकते प्रभुपाद जी संसार छोड़ने के बाद किसी को अमंगल हुआ क्या कितना समय उनका परिवार का अमंगल हुआ नहीं हुआ सारे जगत का कितना मंगल है लेकिन प्रभुपाद कितना अच्छा शिक्षा दिया है हम घर में रहकर सारे दुनिया किसी वक्त को चलते हैं और आजकल के जमाने में तो संसार छोड़ने का कोई जरूरत ही नहीं क्यों संसार छोड़ेंगे क्या काम नहीं कर सकते जो संसार से नहीं हो सकता इस तरह कोई काम है जो संसार से नहीं हो सकता सारे काम हो सकते संसार से और प्रभुपाद इतना अच्छा सिस्टम कर दिया कंप्यूटर वगैरह कितना बड़ी सब कुछ इसका भगवान के सिवा और भगवान भी इतना आयोजन कर दिया बोन वगैरह सब खत्म कर दिया बोन जाएगा कहाँ बने नहीं है वृंदावन कहाँ है वो तो सब बिल्डिंग है जाने का जगह नहीं है तो घर में बैठ के परिवार के साथ भगवान बनने के चाहते हरे कृष्ण ठीक है और ये कठिन काम नहीं है तो इतना महावी शिक्षक केवल हरि नाम का है बस दूसरा कठिन काम दिया ही नहीं केवल एक ही काम खुद में हरिनाम करना दूसरा का हरिनाम करने बोलना बस
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जनार्दन प्रभु की
जय
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की
जय
स्वामी गौर भक्तवृंद की
जय
गौर प्रमाणंद वैदिक